أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتم النبيين والرسل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أئمة الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. قال الله سبحانه وتعالى: اعدلوا هو اقرب للتقوى. ہمارا ٹاپک ہے سماجی انصاف یا سوشل جسٹس جس کو ہم کہتے ہیں. تو آج ہم بگننگ میں ہیں، تو فور پوائنٹس شروع میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، اور نیکسٹ سیشن میں مزید ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. تو جو فور پوائنٹس ہیں وہ سمجھیں کہ اس کا ایک انٹرو کہیں اس کو، یا ابتدائیہ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ ہے بیسیکلی طور پر. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سوشل جسٹس یا انصاف، یعنی ایون جسٹس، یعنی سوشل اس میں ہر سارے جسٹس آتے ہیں. ہیومن ہسٹری کو دیکھیں جو ریلیجس حوالے سے ہمیں بتائی گئی ہے، تو وہ ایک انسانی آئیڈیل چیز کے طور پر بتائی گئی ہے. ہم جتنی بھی ہسٹری ہم جانتے ہیں، جتنی پرانی تاریخ انسانی لائف کے حوالے سے، اس کے بگننگ کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے، اس میں جسٹس اور سوشل جسٹس کے حوالے سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں. چاہے جو سٹوری ہمیں حضرت آدم کے حوالے سے قرآن مجید کوٹ کر رہا ہوتا ہے، یا جو ہے دوسرے نبیوں کے بارے میں انسانی بگننگ کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہمیں حدیث کی شکل میں ملتی ہیں اس میں بھی ہیں، اور ہیومن جو ہسٹری ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی بگننگ سے ہی اس کے ایک سمجھیں کہ اندرونی طور پر، انٹرنلی، وہ ایک طرح سے اس کی طرف ایک طرح سے اس کی ایک اٹینشن موجود رہی ہے ہمیشہ، اور وہ ایسے لاز کو اور ایسی باتوں کو پسند کرتا رہا ہے ہمیشہ، اس کو پسند آیا، لائک کیا ہے، جو جسٹس کے حوالے سے تعلق رکھتی ہیں. دوسرے الفاظ میں، انسانی فطرت میں ہمیشہ سے یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ظلم، زیادتی، کمزوروں کو مارنا، اس کے اوپر تشدد کرنا، ان کے اوپر کسی بھی شکل کا ظلم کرنا، اس کو پسند نہیں کرتا، اور ہمیشہ انصاف کو، عدالت کو، جسٹس کو ہمیشہ پسند کرتا آیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ایشوز ہیومن سوسائٹی میں رہے ہیں، پاسٹ بھی اور آج بھی، تو اس کے پیچھے ون آف دا مین فیکٹر جو ہے وہ ناانصافی، برابری نہ ہونا، ایکول طریقے سے ٹریٹ نہیں کرنا، جس کا جو رائٹ ہے وہ اسے نہ دینا، اور یہ چیزیں جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں. اور بہت سارے اس کے پیچھے جو کلیش ہیں، جو وارز ہیں، جنگیں ہیں ہیومنز کے درمیان، اس کے پیچھے بھی ہم دیکھتے ہیں یہ ایک مین فیکٹر کے طور پہ آتا ہے. فار ایگزامپل، ابھی جو فلسطین میں اور غزہ میں جو ہو رہا ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو جس کا رائٹ ہے وہ اسے دینا نہیں چاہتے ہیں، تو بس یہیں سے مسائل سارے خراب ہو رہے ہیں. اگر انصاف ہو جاتا تو غزہ میں اتنے لوگوں کی شہادتیں اور اتنے لوگوں کا قتل عام کبھی بھی وہاں پر نہیں ہوتا. پوائنٹ ٹو آف فور یہ ہے کہ ہیومنز نے، تاریخ میں انسانوں نے جسٹس کی خاطر بہت سٹرگل کیا ہے، اور ہم بہت سی سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں ایک جسٹس قائم کرنے کے لیے، جس کو آپ سوشل جسٹس کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ سٹرگل کیا ہے. اس حوالے سے بہت ساری موومنٹس آئی ہیں، بہت سارے ہیروز ہمیں ملیں گے، جس کو آپ ریفارمر کہہ سکتے ہیں، مصلحین جس کو قرآن نے کہا، یا دینی جو لٹریچر ہے اس کے اندر ان کو مصلحین، اصلاحی موومنٹس، ریفارمرز قسم کی جو ہے چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں پوری ہیومن سوسائٹی میں، کہ تحریکیں اٹھیں انصاف کا نعرہ لے کر، جسٹس اور حقوق اور رائٹس کے جو ہے سلوگنز کے ساتھ، امتیازی سلوک اور کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کرنا، اس کے اگینسٹ یہ چیزیں ہمیں اٹھتی بھی ہمیں نظر آتی ہیں. یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ بیسیکلی جسٹس کو پسند کرنا انسانی फितरत और उसके नेचर में पहले से जो है मौजूद है, ये बाहर से उसने समझ के अडॉप्ट नहीं किया है जैसे बहुत सारी चीजें वो करता है। हम अगर मजहबी हवाले से देखें इसको, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें तमाम नबियों ने, जितनी भी नबियों की हिस्ट्री हमारे पास है, या उनकी तरफ से कोई बातें हैं हमारे पास, या उनकी किताबें हैं हमारे पास, या उनके हवाले से कोई भी कोटेशन की गई है किसी भी तरीके से, तो हमें ये नजर आता है कि वो सारे नबियों का जो एक मेन गोल होता था, वो कहते थे जी कि हम जस्टिस चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि सोसाइटी के दरमियान एक एक सोशल जस्टिस कायम रहना चाहिए, और ये उनके मिशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें के तौर पर हमें नजर आता है। और बहुत सी जगहों में इसलिए देखते हैं कि जो माशरे में ताकतवर तबका था, जो जुल्म करता था, इंसाफ के खिलाफ काम करता था, उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट चलाई है। बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, बहुत से उन्हें बड़े टॉर्चर सहे हैं जो नबी थे हमारे, उनको देखें। जैसे सबसे बड़ा जो हमें एक ऐसे जुल्म की स्टोरी मिलती है, तो वो फिरौन की है। फिरौन के हवाले से देखें कि आप नबियों ने किस तरह उस ऐसे शख्स को जो इंसाफ और सोशल जस्टिस के अगेंस्ट था, उसके खिलाफ किस तरह एक बड़ी मूवमेंट चलाई, और वो कितनी जो है स्ट्रगल उनको करनी पड़ी, ये हमें जो है नजर आता है। नबियों के जो खुदा के मैसेंजर्स हैं, खुदा के तरफ से भेजे गए हैं, उनका भी जो बुनियादी एक एजेंडा है, उस एजेंडे का इम्पोर्टेंट तरीन जो पार्ट है या गोल है, वो हमें यही इंसाफ नजर आता है। आते हैं क्लोज होके कुरान मजीद की तरफ आते हैं, तो कुरान मजीद भी जस्टिस और सोशल जस्टिस की इम्पोर्टेंस को बयान करता है। और कुरान मजीद जो है सोशली हवाले से इंसान इंसाफ को और अदालत को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है, कद्र व अजमत का कायल है, और कहता है कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो चेंजेबल नहीं है। यानी कोई नहीं कह सकता है कि आज के बाद हम इस प्रिंसिपल जस्टिस को हटा के इसकी जगह में इससे ज्यादा मोर बेटर किसी प्रिंसिपल को उसकी जगह में लेके आएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। कहता है कि ये चेंजेबल ही नहीं है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जस्टिस होना चाहे सोसाइटी के दरमियान। कुरान कहता है ये चेंज नहीं हो सकता है, और कहता है ये खुदा का हुक्म है कि तुम लोगों ने, तुम्हारी नेचर में, फितरत फितरत के अंदर हमने जस्टिस की तरफ एक मोहब्बत रखी है, अट्रैक्शन रखी है बाय नेचर तुम लोग इसके अंदर। फिर खुदा का ऑर्डर भी है, यानी ऑर्डर से मुराद जिसको हम कहते हैं वाजिब है कि लोग जस्टिस की बेस पर लाइफ गुजारें, जाती तौर पर भी और सोशली एतबार से भी। ये हमारा लास्ट और लास्ट पॉइंट था जो हम इस सिलसिले में जा रहे हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, कुरान मजीद में चलते हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 90 है, जिसमें बहुत ही क्लियर वर्ड्स के साथ है और ऐसी स्ट्रक्चर को यूज किया है, शॉर्ट आयत है स्ट्रक्चर, जिसके अंदर वाजिब के बारे में बात हो रही है। कह रहे इन अल्लाह यामुरु बिल आदल, वो कहते हैं कि खुदा ऑर्डर करता है यकीनन, बगैर किसी शक के खुदा ऑर्डर करता है कि आप इंसाफ से काम लें। और इसी तरह सूरह सात की आयत नंबर 26 में कहता है या दाऊद, दाऊद खुदा का एक प्रॉफिट था, पैगंबर था, उसके लिए जो ऑर्डर्स आ रहे हैं कि आपने लोगों के साथ अब कैसे बिहेव करना है, क्या आपके प्रिंसिपल्स होंगे सोसाइटी, जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके अंदर, तो कहते हैं या दाऊद इन्ना जअलना क्या खलीफतन फिल अर्थ, देखो दाऊद हमने आपको जमीन का रूलर, खलीफा, हुक्मरान के तौर पे आपको भेजा है, तो अब आपकी मेथड क्या होगा, आपका तरीका। जूम पर पावर पॉइंट शेयर नहीं हो रहा है, अब मुझे नहीं पता कैसे शेयर होगा। हाँ सॉरी, मुझे याद आ गया, स्क्रीन शेयर पावर पॉइंट, जी मैंने शेयर कर दिया। तो खुदा फरमाता है कि दाऊद आपका जो बेस्ट तरीका होगा, जिस की बुनियाद पर आपने खुदा यानी रूलिंग करनी है जमीन में, वो है या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्थ, दाऊद हमने आपको जमीन का हुक्मरान और रूलर बनाया है, फहकम बैनन्नास, लोगों के दरमियान आप हुकूमत करेंगे। हुकूमत की बेस, फाउंडेशन, मेन जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बिल आदल, अदालत, जस्टिस और इंसाफ के साथ आप करेंगे, न कि आप अपनी मनमानी करेंगे, ख्वाहिशात के हिसाब से आप नहीं चलेंगे। ये दो एग्जाम्पल हमने दिया, क्योंकि आगे हम टोटली कुरान से ही एग्जाम्पल्स देने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम अगले फेस में जाएंगे। सेकंड जो चीज है कुरान के हवाले से वो ये है कि कुरान कहता है, खुदा का हुक्म ये है कि आपने अपने दुश्मन और एनिमी के साथ भी इंसाफ करना है। सिर्फ ये नहीं कि सोसाइटी में आप जो सोसाइटी बनाएंगे उसमें आपने सोशल जस्टिस करना है, जस नहीं, अपने दुश्मन के साथ भी। जो दुश्मन दुश्मन है जाहिर है, कहता नहीं दुश्मनी अपनी जगह, आपके लड़ाई झगड़े अपनी जगह, आपके इख्तलाफात, लेकिन जब आप डील करेंगे उसके साथ, आप उसके साथ कोई भी मामला आपका होगा जंग में अमन में जो भी होगा, ये लेकिन वो इंसाफ पर होना चाहिए। और बहुत सख्त तरीके से नसीहत करता है कि खबरदार आपने जो है ना बेइंसाफी से काम लिया। सूरह माईदा की आयत नंबर 8 में आते हैं, वहां फरमाता है वला यजरु मिन का शअना कौमिन अला अन तअदिलू, फिर फरमाते हैं अदलू वाकरा बुल तकवा। ऑर्डर्स हैं, जहां भी जस्टिस की बात आती है वहां डायरेक्ट ऑर्डर कर रहा होता है खुदा, कहता किसी कौम के साथ तुम्हारी दुश्मनी, किसी ग्रुप के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेइंसाफी शुरू करो, क्योंकि हमारे दुश्मन है तो फ्री हैंड है, जैसे करना है करो। हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, हम यहाँ जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसको भी हम देखते हैं। यहाँ मसलन हिटलर को अगर अपनी मनमानी करनी थी तो उसने इंसाफ को देखा नहीं, बल्कि कहा मैं कैसे सक्सेसफुल हो रहा हूँ। नेपोलियन को आप देखें तो इसी तरह है। यहाँ ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं बेचारे जो मल्टीपल टाइम पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है, उनकी हर चीज को जो है तबाह किया गया है, सिर्फ अपने गोल्स को देखा, जस्टिस और अदालत को नहीं देखा। कुरान कहता नहीं, हुजूर पाक देखें जंगों के अंदर भी कहते थे नहीं बेइंसाफी नहीं हो सकती है। फिर खुदा फरमाता है देखो इंसानों, तुम्हारा जो सबसे हाई क्वालिटी जो चीज किसी भी ह्यूमन के पास, किसी भी मोमिन के पास हो सकती है ना, वो उसका करेक्टर है, तकवा और परहेजगारी है। तो कह रहा अच्छा, तकवा और जो परहेजगारी है ना, उसकी सबसे करीब तरीन चीज अदालत और इंसाफ और जस्टिस के साथ पेश आना है। यानी दिलचस्प ये है कि दुश्मन के साथ इंसाफ से पेश आओ के फौरन बाद उसी आयत के अंदर कहता है इंसाफ करो, इंसाफ के साथ डील करो, क्योंकि इंसाफ करना ही तकवा के करीब होना है। यानी कोई शख्स मोमिन ये समझे मैं बड़ा मोमिन हूं, मैंने दीन के दुश्मन को खुदा के दुश्मन के साथ यूं किया और उसने बेइंसाफी की हो, तो दरहकीकत उसने बेतकवाई की है, ईमान के खिलाफ काम किया है, ये खुदा को पसंद नहीं आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल देते हैं, जो आइसिस कर रही थी खुदा के नाम पर, जो अलकायदा ने किया, बोको हराम कर रही है, अबू सयाफ जैसे ग्रुप कर रहे हैं जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो लोगों के गले काटना, उनको तशद्दुद करना, ख्वातीन के साथ ज्यादती करना, उनको कैप्चर करना, उनको कनीज बनाना, लोगों को जिंदा जलाना जैसे जॉर्डन के उस पायलट के साथ किया गया, लोगों को बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स को मारना, ये सब क्या है? ये बिल्कुल कुरान की इस आयत के खिलाफ है जो कुछ उन्होंने किया, दीन के नाम पर किया। जाहिर है कि वो दीन के एजेंडे से तो उठे नहीं थे। तो खैर, अगर तुम दीनदार हो तो तुम तो ज्यादा जस्टिस करोगे दुश्मन के साथ भी, क्योंकि जस्टिस करना ही तुम्हारी ईमान की असल में क्या है, पहचान है और साइन ऑफ योर बेस्ट ईमान है जो तकवा के लेवल पर है। लास्ट टू आयात इस सिलसिले में और हम पढ़ते हैं जो कुरान के अंदर से है, वो सूरह हदीद की आयत नंबर 25 है, और उसके अंदर खुदा फरमाता है बेतहकीक वलकद अरसलना रसूलना बिलबैनात वअंजलना माअहुमुल किताब एक वलमीज़ान दो लियकूमुन नासु बिलक़िस्त। कह रहे देखो हमने अपने जितने भी मैसेंजर पैगंबर रसूलों को भेजा है ना, बड़े स्ट्रॉन्ग लॉजिकल दलाइल है उनके पास। वो ऐसे नहीं कहते आके हम आए हैं खुदा की तरफ से, जो हम बोले तुम एक्सेप्ट करो, कहते नहीं, हम कहते हैं हम जो बात करते हैं हमारा आर्ग्यूमेंट लॉजिकल बुनियादों पर है, रैशनल बेसिस पर है, आपके सामने जो हम आर्ग्यू करेंगे वो आपकी अकल आपकी लॉजिकल थिंकिंग एक्सेप्ट करेगी, उसके अगेंस्ट हम कोई बात नहीं करेंगे, बावजूद उसके कि हम खुदा की तरफ से आए हैं, मर्जी तो हमारी चलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद एक बात तो ये कह रहे हैं कि हमने उनके कहता है इन रसूलों को एक बुक दी है, किताब दी है, और हमने एक मीजान दिया है। मीजान असल में वही वो स्केल है, तराजू, जो कि कोर्ट में होता है आमतौर पर, कह रहे हैं कि ये ने मसावात और बराबरी के साथ पेश आए। अच्छा, ये सब दिया है, ये सारे टूल्स दिए हैं, लॉजिकल थिंकिंग है, रैशनल आर्ग्यूमेंट है, बुक्स है, एक जो है इंसाफ वो दिया है, यानी मसावात के हवाले से एक मोतदिल चीज दी है। आखिर हदफ क्या है तुम्हारे नबियों का, करना क्या चाहते हैं? कहते हैं ये सब इसलिए दिया है लियकूमुन्नासु बिलकिस्त, ताकि लोगों के दरमियान इंसाफ और जस्टिस के साथ पेश आए, और कायम जस्टिस के साथ वो खुद पेश ना आए, सोसाइटी को, सोसाइटी में जस्टिस कायम करें, लोग एक दूसरे के साथ जो डील करें उसमें जस्टिस मौजूद होनी चाहिए इन द ऑल यानी साइट ऑफ द लाइफ, यानी इकोनॉमिकल जस्टिस, बराबरी सबको मौका मिलना चाहिए, एजुकेशनली हवाले से एक बच्चा ग्रो अप होता है, खाने पीने के हर हवाले से उसको क्या चाहिए, एक इक्वल तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए। सेशन नंबर टू में हम यहां से इंटर हो रहे हैं और मैं इस सिलसिले में कुछ इब्तदाई चीजें बयान करूंगा, और विद इन 10 to 15 मिनट मैक्सिमम या लेस देन मैं इंशाल्लाह ये सेशन हमारा क्लोज हो जाएगा। वो है कि तालीम यानी तालीम और तरबियत बुनियादी तौर पर, ये इसका हदफ क्या है, खुदा क्या चाहता है इससे, कुरान क्या बोलता है कि ये जो तालीम और तरबियत है, अहादीस हैं, इस मौजू को हमने आगे जाके खोलना है मजीद। यहां बस मैं सिर्फ वो जो मेन चीजें हैं वो बताना चाह रहा हूं। कहता है तालीम और तरबियत का जो बुनियादी मकसद है वो इंसाफ पसंदी है, जस्टिस चाहते हैं हम, कि लोगों के अंदर जो है ना ये उनका असलन वो किसी के साथ डील ही करें ना, खुद से करें, खुदा की इस कायनात के साथ करें या खुदा के बंदों के साथ करें, तो इंसाफ के ऊपर करना चाहिए। इन लोगों को इस तरह एजुकेट करना है, ऐसे लोगों की अपब्रिंगिंग या तरबियत करनी है कि वो खुद आदिल बन जाए, मुनसिफ मिजाज बन जाए, अदालत का फ्लैग लेके हमेशा ग्राउंड पे नजर आ जाए, कहें एंटी अदालत एंटी जस्टिस में किसी चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी वो इस वक्त अलमबरदार बन जाए, हत्ता चाहे वो रिश्तों के साथ डील करते हों, फैमिली मेंबर के साथ डील करते हों और हमसाये के साथ डील करते हों, उस जिस सिटी में रहते हैं उन लोगों से हो, उसकी कौम हो, कबीला हो, दूसरी कौमें हो, दूसरे कंट्रीज हो, दूसरे लोग हों, सबके साथ जब वो कोई भी किस्म की डीलिंग करते हों तो उनके दरमियान ये इंसाफ का पहलू मौजूद होना चाहिए। अगर ये इंसाफ का पहलू मौजूद नहीं रहता है तो कहते हैं कि इंसाफ के रास्ते से, जस्टिस के रास्ते से, अदल के रास्ते से इनराफ का मतलब ये है कि वो हवाए नफसानी को फॉलो कर रहे हैं, वो हवाए नफसानी की पैरवी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो गलत ट्रैक पर चले गए हैं। तज़किया नफ्स या जो है तहजीब नफ्स का जो अखलाकी पहलू है उसके अंदर भी देखें तो एतदाल की बात की गई है, जैसे कि हमने, अगर आपको याद हो तो इंसान कामिल के बहस में हमने इंसान मोतदिल से हमने शुरू किया था, इसीलिए कि एक बैलेंस इंसान होना चाहिए, सबसे पहले हमें एक बैलेंस ह्यूमन की तौर पर हमें बैलेंस एतदाल कहते हैं अरबी में, एतदाल का लफ्ज यही अदल से निकला है, अदल यानी जस्टिस वाला मोमिन, वो मोमिन जो कि हर चीज के साथ जब पेश आता है ना खुद अपने के साथ इंसाफ करता है, दूसरों के साथ भी इंसाफ करता है, कायनात में जो भी फिनोमेनाज है सबके साथ करता है, जितने एग्जिस्टेंस है सबके साथ इंसाफ के साथ पेश आता है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, एक वाकया भी है और हदीस भी है, एक शख्स ने हुजूर के सामने एक दरख्त पे जो है एक लोहे के सरिया टाइप या किसी आले से चीज से उस दरख्त को मार रहा था ऐसे ही, तो वो जूं जूं मारता था उसके पत्ते गिरते थे ऊपर से, और इस पत्तों के गिरने से बारिश की तरह वो खुश हो रहा था। जब उसने रिपीटेडली ये काम किया तो हुजूर पाक ने असाब को कहा इसे बुलाओ के इधर ले आओ, आए तो कहा ये तुम क्यों कर रहे हो, क्या इसे काटना चाहते हो, तुम्हारी जरूरत है, तो कहा नहीं या रसूल, मैं इसका मालिक नहीं हूं, ये तो रास्ते में पड़ा हुआ दरख्त है। तो हुजूर पाक ने फरमाया इस दरख्त के साथ अदालत के साथ पेश आओ, वगर न ये तुम्हें कल खुदा के कोर्ट में, अदालत के कोर्ट के सामने तुम्हारा गिरेबान पकड़कर खड़ा हो जाए। एक दरख्त के साथ भी गलत तरीके से पेश आने में खुदा रसूल ने लफ्ज अदालत इस्तेमाल किया, यानी इंसाफ का लफ्ज इस्तेमाल किया, इवन यानी कहता है दरख्तों के साथ भी इंसाफ के साथ पेश आओ, मसलन मैंने जूते खरीदे हैं, मैं जूतों के साथ मुझे इंसाफ के साथ पेश आना, मेरे कपड़े हैं उसके साथ इंसाफ के साथ पेश आओ, खाना है रोटी है, बाप है तो औलाद है, औलाद बाप है, ये सारे रिश्ते नाते इंसाफ के साथ पेश आते, ये माइक्रोफोन हमने लिया है, इंसाफ का तकाजा ये है कि इस माइक्रोफोन के को वहां पे यूज किया जाए जिसके लिए ये खरीदा गया है, इसीलिए इंसाफ और जस्टिस की जो तारीफ की जाती है उसके अंदर के दो किस्म की तारीफें हैं, उनमें से एक तारीफ के अंदर कहते हैं ईता उजी हक इन हक, हर साहेब हक को उसका हक दिया जाए, सेकंड तारीफ के अंदर कहा जाता है वद उशई फी मौदई, जिस चीज को जिस चीज के लिए बनाया गया है आप उसको वहीं पे यूज करें। इंसान को खुदा ने एक अच्छा ह्यूमन और एक अच्छा बंदा बनने के लिए खलक किया है, तो हमें भी कोशिश होनी चाहिए, जो हुकूमतें हैं, जो पावरफुल लोग हैं, इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिसको हम बनाए हैं, वो सब भी ऐसे होने चाहिए कि उस ह्यूमन को उसी मकसद की तरफ ले जाए, जितनी भी उसकी लाइफ है उसमें वो उसी मकसद के पीछे उसको ले जाए। अगर हम उसको पकड़ के डाइवर्ट करके किसी और तरफ ले जाएंगे तो ये उसके साथ जुल्म है, यहाँ पे जुल्म है। अच्छा, मैंने यहाँ इशारा कर दिया है पावर, अथॉरिटी, हुकूमत, इन्फ्लुएंस वाले लोग, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सोशल जस्टिस के साथ, इसका बड़ा गहरा लिंक है जिसकी तरफ हम इंशाल्लाह आने वाले हैं। सेशन 2 में हम इंटर हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि हम सेशन 2 में हम इंटर ना हो जाएं। आज को आज आप इसको एक स्टार्टिंग सेशन के तौर पे ले लें, और 33 मिनट ऑलमोस्ट हमारा सेशन रहा, 2 मिनट और लग सकते हैं, तो ये इनफ मेरे ख्याल में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम मजीद डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सेशंस के हवाले से मैं जो इब्तदाई हिस्सा है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, वो सिर्फ आपके जहन में डाल दूं कि द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस इन द आई ऑफ द कुरआन करीम, कुरआन करीम की निगाह में आदल व इंसाफ का मतलब क्या है। अच्छा, इससे पहले हमने अहमियत कुरान की निगाह में, जो अहमियत है आदल व इंसाफ की, अभी तक तो हम उस पर बात कर रहे थे, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, एज ए ह्यूमन लाइफ में, आदल व इंसाफ की, जस्टिस की। अब आ रहे हैं कि मीनिंग क्या है इसकी, क्योंकि डिफिनेशंस हैं दुनिया में, आदल व इंसाफ की डिफिनेशंस हैं, हर आदमी अपने पास भी एक डिफिनेशन रखता है, और हर नेशन भी रखते हैं, हर कंट्रीज भी रखते हैं, हर मुमकिन है जितने रिलीजियस हैं उनके पास भी एक डिफिनेशन अदल इंसाफ की है। बाज औकात जो अदल की डिफिनेशन बयान की जाती है वो अदल से उसका कोई लिंक ही नहीं होता, बाज औकात उसी के अंदर जुल्म पोशीदा होता है। तो हमें ये देखना है कि असल अदल है क्या, कुरान किस चीज को अदल कहता है, इंसाफ किसको कहता है। लिहाजा ये असल में बेसिक हमारा टॉपिक होगा, और की पॉइंट्स इसके ऊपर इंशाल्लाह कुरान मजीद के हवाले से हम बयान करेंगे। हमें बुनियादी चीज, जो चीज हमें याद रखने की है, वो ये है कि ये जहन में रखें कि खुदा फरमाता है ये इंसाफ का, इंसाफ पसंद करना, इंसाफ लाइक, जस्टिस लाइक करने वाले लोग, ये कहते ये आपके नेचर में, फितरत में मैंने पहले से ही डाला है ये। यानी हर इंसान कोई भी है, उसका रिलीजन कुछ भी है, नेशन कुछ भी है, और रीजन कुछ भी है, लेकिन उसको देखेंगे आप वो इंसाफ पसंद करने वाला होगा, अगर वो अपने नेचर में है तो इंसाफ को पसंद करेगा, वो जुल्म को कभी पसंद नहीं करेगा, ये फितरत के अंदर हमने रखा है। और ये बात खुदा ने मुतादिद जगहों में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। हमने एक एग्जाम्पल इस सेशन के लिए सेलेक्ट किया, वो सूरह इन्फितार की आयत नंबर 7 है, और उस आयत का जो मेन पॉइंट है वही हिस्सा हमने सेलेक्ट किया, अल्लदी खलका का, एक वो खुदा जिसने तुम्हें पैदा किया। इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पावर पॉइंट में, कि अल्लादी खलका का, वो खुदा जिसने तुम्हें पैदा किया है, खलक किया, तुम्हें तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग की है, कहता है फसवा का आदला का, और उसने जो ना तुम्हारे जो खिलकत है उसको, तुम्हारी खिलकत और स्ट्रक्चर में एक इक्वलेशन और जस्टिस रखा है, और तुम्हारी बेस भी उसने जस्टिस और इंसाफ के ऊपर कायम किया है। ये खुदा कह रहा है कुरान के अंदर सूरह इन्फितार में, अल्लजी खलका का फसवा का फअदला का, तो यानी इंसानी तखलीक की बुनियाद और बेस अदल व इंसाफ पर रखी गई है। ये असल गुफ्तगू हमारी खत्म हुई, लेकिन जब बात यहां तक आई है तो 2 जुमले में अर्ज कर दूं, अगर चीज के बाद मजलिस भी है ऑनलाइन। आज 28 रजब है, और नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा अबा अब्दुल्ला अलैहि सलाम ने सन 60 हिजरी में हिजरत की, असल में तहरीक शुरू की थी, अदालत और इंसाफ की तहरीक थी, वो मदीने मुनव्वरा से मक्के की तरफ अब रवाना हुए थे, और तकरीबन ऑलमोस्ट 4.5 महीना आप मक्के में तशरीफ रखते हैं आप, और फिर आप वहां से आगे बढ़ते हैं और फिर एक अजीम कुर्बानी करबला में देते हैं। तो उसको अगर आप कंकालते हैं तो तमाम जो वसीयत हैं, जो खुतबे हैं, जो इरशादात हैं, जो खतूत हैं, जो गुफ्तगू है आखिरी लम्हों तक, तो उसमें यही चीज नजर आती है कि जो खुदा का दीन है वो अदल इंसाफ पर मबनी है, और अदल इंसाफ का इस वक्त गला काटा जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं इमाम हुसैन का गला काटना यानी अदल इंसाफ का गला काटना। शिमर ने इमाम हुसैन यानी रसूल के सुर्ख रिश्तों में नवासे की गर्दन पर वो उस मलऊन ने खंजर नहीं चलाया था, बल्कि उस मलऊन ने अदल इंसाफ के की गर्दन पर छुरी चलाई थी। ऐसा अदल इंसाफ है मुजस्सम जो कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए अदल इंसाफ के निजाम और अदल इंसाफ की तरबियत और अदल इंसाफ की तालीम देने के लिए ये नवासा आया था। इसीलिए हम इंतजार हैं, आज मुंतजर हैं, इसी सिलसिले ये अदल इंसाफ पर से जो ताल्लुक रखने वाली आखिरी शख्सियत है हजरत इमाम जमाना, उनकी आमद और उनकी जो सबसे बड़ी सिफात हम बयान करते हैं कि वो आए तो क्या करेगा, तो जबान जबान में हर मुसलमान और उनके मानने वाले के शियों के जबान पे ये लफ्ज होता है, बल्कि दुनिया के तमाम अदियान जो किसी भी ऐसे एक बड़े रिफॉर्मर, एक नजात देने वाली शख्सियत की आमद के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वर्ड्स जो होते हैं वो ये हैं, वो कहते हैं यमला उल अर्दो किस्तम व अदला कमा मुलियत दुल्म व जौरा। दुनिया में इंसाफ और अदालत और जस्टिस को इस तरह दुनिया, पूरी दुनिया में जस्टिस इस कदर भर जाएगा, पूरी दुनिया एक सोशल जस्टिस के ऊपर बेस कर रही होगी, हर किस्म के जस्टिस पर बेस कर रही होगी। बिफोर ये सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम हम देखेंगे, दुनिया में बड़ा जुल्म ज्यादती होगी। अलबत्त ये जुल्म ज्यादती इंसाफ के नारे से होगी, कभी और अच्छे स्लोगन्स जैसे डेमोक्रेसी के नारे से होगी, कभी जो है इक्वलेशन के नारे से होगी। सिर्फ जंगें नहीं होंगी, सिर्फ गोलियों के जरिए से जुल्म नहीं होगा, सिर्फ इंसान को जख्म दे के जुल्म नहीं होगा, इंसान के करेक्टर एसेसिनेशन जिसको कहते हैं, इंसान की शख्सियत को मारना, उसकी उसके ईमान को नुकसान पहुंचाने का सामान फराहम करना भी अदालत के खिलाफ है। इंसाफ का तकाजा ये है कि एक इंसान रूहानी, अखलाकी, स्पिरिचुअल हवाले से भी उसे वो जरूरी चीजें मिले जो उसकी हेल्थ के लिए मिलती हैं, जो उसके कपड़े के लिए मिलती हैं, जो उसकी जॉब्स के लिए मिलती हैं, जो उसको रहने के लिए अच्छा घर मिलता है, फैसिलिटीज मिलती हैं, ये सब ठीक है। इसमें जस्टिस होना चाहिए, इसमें बराबरी होना चाहिए, इसमें इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, तफरीक नहीं करनी चाहिए, ये सब एक्सेप्ट है। स्पिरिचुअल हवाले से भी तो उसकी कुछ जरूरत है ना, उसमें जस्टिस कहाँ है? ईमानी एतबार से जो उसके ईमान को तबाह करने वाली जो आप बेइंसाफियां करते हो तो उसमें जस्टिस कहाँ है? ये भी तो हमें चाहिए। तो जब इमाम आएंगे तो जो निजाम होगा वो हर हवाले से जस्टिस वहां पर नजर आएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।